ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास में मध्यम वर्ग की भूमिका की सराहना की है और कहा है कि उनकी आकांक्षाएं राष्ट्र की प्रगति को गति दे रही हैं। कल राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने मध्यम वर्ग को अधिक धन देकर सशक्त बनाने के सरकार के फैसले का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व में एनडीए सरकार के विकास का मॉडल राष्ट्र प्रथम है, जो तुष्टिकरण की बजाय संतुष्टिकरण पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि लोगों ने इस मॉडल की जांच की है, समझा है तथा समर्थन दिया है और इसलिए सरकार को तीसरी बार जनादेश प्रदान किया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ सबका विकास का मॉडल कांग्रेस के समझ से परे है, क्योंकि पूरी पार्टी ही केवल एक परिवार के लिए समर्पित है। उन्होंने देश में आपातकाल लागू करने के लिए कांग्रेस सरकार को निशाने पर लिया। प्रधानमंत्री ने अंत में कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण देश की उपलब्धियों, भारत से विश्व की उम्मीदों, देश की आम जनता के आत्मविश्वास और विकसित भारत के संकल्प का विस्तृत ब्यौरा था। प्रधानमंत्री के जवाब के बाद राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो गया और कई विपक्षी सांसदों के संशोधनों को ध्वनिमत से खारिज कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज लगभग 5 वर्ष में पहली बार ब्याज दर को कम किया है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो रेट को 25 आधार अंकों से घटाने का निर्णय लिया। केंद्रीय बैंक ने नीति रेपो दर को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप स्थायी जमा सुविधा एसटीएफ दर 6% होगी और सीमांत स्थायी सुविधा एमएसएफ दर और बैंक दर 6.5% होगी। एमपीसी ने सर्वसम्मति से तटस्थ रुख बनाए रखने और लक्ष्य के साथ मुद्रास्फीति के स्थायी संरेखण पर स्पष्ट रूप से ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया, जबकि विकास का समर्थन किया। 6.25% तक 25 आधार अंकों की दर में कटौती मई 2020 में अंतिम दर में कमी के बाद आई है। दरों में अंतिम संशोधन फरवरी 2023 में हुआ था, जब नीति दर को 25 आधार अंकों से बढ़ाकर 6.5% किया गया था। केरल में राज्य के वित्त मंत्री के एन बालगोपाल आज राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश करेंगे। श्री बालगोपाल पिछले वर्ष की आर्थिक समीक्षा और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतिम अनुपूरक वित्तीय ब्यौरा भी पेश करेंगे। बजट पर सामान्य चर्चा 10, 11 और 12 फरवरी को होगी। बजट सत्र 17 जनवरी को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के संबोधन के साथ शुरू हुआ था। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कल घोषणा की कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2024-25 में 5 करोड़ से अधिक दावों का निपटारा कर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। पिछले वर्ष संगठन ने 4 करोड़ 45 लाख दावों का निपटारा किया था। डॉ. मांडविया ने कहा कि दावों के समाधान की प्रक्रिया को सरल बनाकर और शिकायतों की संख्या कम करके कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ये सफलता प्राप्त की है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की कल होने वाली मतगणना की सभी तैयारी पूरी हो गई है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी आर.एल.स्वाज ने बताया कि 70 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के फॉर्म 17C सहित चुनावी दस्तावेजों की जांच कर ली गई है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान चुनाव आयोग के केंद्रीय प्रेक्षक, उम्मीदवार और उनके एजेंट तथा चुनाव अधिकारी उपस्थित थे। सीओ वाज ने कहा कि जांच प्रक्रिया के दौरान किसी भी उम्मीदवार ने कोई शिकायत नहीं की। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों ईवीएम को आयोग और पुलिस अधिकारियों की कड़ी निगरानी में स्ट्रांग रूम में रखा गया है। मतगणना के लिए दिल्ली के 11 जिलों में 19 केंद्र बनाए गए हैं। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 आज शाम चीन के हार्बिन में शुरू होंगे और इस महीने की 14 तारीख तक चलेंगे। खेलों की आयोजन समिति के उप महासचिव और मुख्य प्रवक्ता ने कल कहा कि इस साल के खेलों में एशियाई देशों तथा क्षेत्रों के इतिहास का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व होगा। उद्घाटन समारोह में एशिया के 34 देशों और क्षेत्रों के प्रतिनिधि परेड में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।